जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश। तो महाप्रभु प्रयागराज में आ चुके हैं और बंगाल की ओर से श्रील रूप गोस्वामी और उनके भैया अनूप श्री वल्लभ, एक ही बात, तो वो भी इलाहाबाद में आ चुके हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में दस अश्वमेघ घाट है, बहुत सुंदर घाट है। अभी हम आए वहाँ से, वहाँ सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद का भी छोटा सा मंदिर है। तो गंगा नदी के किनारे हैं, शांत जगह, जहाँ जो मेन स्ट्रीम जगह है उनसे थोड़ा दूर किनारे पे। तो वहाँ एकांत में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। तो हमने कल पढ़ा था, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि माली है ना ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रताप पाए भक्ति लता बीच। ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव भ्रमण कर रहे हैं और उसमें से कोई एक ही जीव, अनंत कोटि जीव में एक ही जीव भाग्यवान होता है जो गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज पाता है। गुरु की, वैसे गुरु कृष्ण प्रताप पाया भक्ति लता बीज, लेकिन प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज पाता है। और बाद में वो भक्त माली बनता है और माली का काम है बीज को बोना और उसको पानी देके उसमें से सुंदर पौधा या तो वेली उत्पन्न करना। तो वो माली है ना करे से ही बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो भक्त माली बनता है, भक्ति लता बीज गुरु कृपा से पाता है और उसको हृदय में बोता है, बाद में उनको पानी का सिंचन करता है। वो कौन सा पानी का सिंचन करता है? श्रवण और कीर्तन रूपी जल का वो सिंचन करता है। जब सिंचन करता है तो उसमें से अंकुर भक्ति लता अंकुर फूटता है और बाद में उसमें से भक्ति लता फूटती है। भक्ति लता ये स्वर्गलोक ब्रह्मलोक ये ब्रह्मांड को भेद के ब्रह्मांड भेदी ब्रह्मांड भेदी जाए तो परव्योम में जाती हैं, बाद में विरजा को पार कर देती हैं, बाद में वैकुंठ लोगों को भी पार कर देती हैं और बाद में आखिरी में गोलोक वृंदावन तक पहुँचती हैं जहाँ श्री कृष्ण भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं। तो उनके चरणारविंद में वो आरोहण करती है, आरोहण, और बाद में उनको फल फूकते हैं, उनको फल बैठते हैं। और वो फल है श्री कृष्ण भगवान के प्रेम रूपी फल। तो वो जब फल पक जाता है तो फल गिरता है तो यहाँ हमारे पास गिरता है। हाँ जी,
फल का कैसे ना, क्या नाम बोल रहे
हैं? प्रेम,
प्रेम रूपी फल, कृष्ण प्रेम रूपी फल। हाँ, कृष्ण प्रेम रूपी फल उनको बैठते हैं तो वो कृष्ण रूपी, कृष्ण प्रेम रूपी फल हम जहाँ हैं वहाँ गिरता है। बाद में वो फल हम लेके उनका आस्वादन करते हैं। तो ये भक्ति लता जो है उनको चाहिए कि हम जो पानी डाले वो उनको मिले। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि हमको बाढ़ बांधनी है, मतलब कि फैंस लगानी है, ताकि हाथी माता, हाथी मत, मत वाला हाथी ये बाग में घुस न जाए जहाँ हमारी भक्ति लता है। अगर मत वाला हाथी ऐसे घुस जाएगा तो भक्ति लता को उनके मूल से खींच के उखाड़ देता है। तो भक्ति लता के पाता और सब कुछ सूख जाता है। तो ये बाढ़ बांधनी है का मतलब है कि जो वैष्णव अपराध है वो वैष्णव अपराध से बचना, वो बाढ़ है। हाथी मत ये वैष्णव अपराध है, मतलब कि छोटा हो या मोटा कोई भी वैष्णव हो उनका अनजाने में भी अपराध हो गया तो वो हाथी मत है। उससे हमारी भक्ति लता मूल से उखड़ जाएगी, बिखर जाएगी। तो हमको चाहिए कि हमारी भक्ति लता जारी रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मंजू?
चारों तरफ बाढ़ लगा के रखनी होगी, जैसे मत वाला हाथी मतलब घुस न जाए।
तो मत वाला हाथी क्या है, कौन है? बाला, मत वाला हाथी कौन है बेटे?
बुरे काम।
बुरे काम मतलब कौन सा बुरा काम है रीता? दो, वेरी गुड शशि, वेरी गुड। और आप रश्मि?
हाँ,
वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध कौन से वैष्णव, छोटा हो या मोटा हो? कोई और वो वैष्णव अपराध कैसे नहीं होना चाहिए? अनजाने में भी
नहीं
होना चाहिए। अगर अनजाने में भी वैष्णव अपराध, छोटा या मोटा, वैष्णव का अनजाने में भी अपराध हुआ, जैसे उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? रूप गोस्वामी ध्यान में बैठे थे और अनजाने में एक पंगु का अपराध हो गया। सारी कहानी नहीं कहती हूँ क्योंकि सूर्य ने किया, तो अनजाने में अपराध हो गया। तो उनकी समाधि कई दिनों तक, उनको समाधि भगवान की लीलाओं में। हाँ, रूप गोस्वामी अनजाने में पंगु का अपराध हो गया तो कई दिनों तक उनका भजन छूट गया। तो अनजाने में भी वैष्णवों का अपराध नहीं, और छोटा हो या मोटा। बाद में रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो बाढ़ होती है उसमें इससे बच जाओगे वैष्णव अपराध से, अगर आप नहीं करते हो तो बाढ़ में जो फैंस होती है उसमें दूसरी उपशाखाएँ फूटती है। तो उपशाखाएँ कौन सी हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा। तो कुटिल नीति, लाभ, मुझको ये लाभ हो जाएगा, मुझको ये लाभ हो जाए, लाभ, पूजा, मेरी लोग पूजा करेंगे, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो ये सब क्या है? घास फूस है, या तो उपवेलियां हैं। जैसे मुख्य वेली है भक्ति लता और दूसरी लता कौन सी है? ये लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा और कुतिनाती, ये सब क्या है? घास फूस है, उपलता है, उपशाखा है, उपशाखा। और दूसरी उपशाखा है क्या है? कि मांस भक्षण करना, या तो पाप पापाचार करना, ये सब घास फूस है। तो ये भक्ति लता का गला रौंद देती है, ये उपशाखा है, तो इससे हमको बचना है। तो इस चीज़ों से हम बचेंगे तो हम जो श्रवण कीर्तन रूपी जल का सिंचन करते हैं भक्ति लता को, तो भक्ति लता को ही वो पानी मिलेगा, तो वो फ्लरिस, वो बहुत बढ़ेगी, वो बहुत बढ़ेगी। नहीं तो हमारा पानी कौन पी जाएगा? उपशाखा और उपलता, है ना? तो हमको बचना है सबसे, और हमारा पानी किसको देना है?
भक्ति लता।
और पानी पानी किस रूप का पानी है? तो क्या पानी करना है? और क्या श्रवण कीर्तन करोगे?
हरे
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम राम राम, ये श्रवण कीर्तन। तो अभी आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, किंतु यदि लगातार अंगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछाय असंख्य तार लेखा। असंख्य है उपशाखा, कितनी है? असंख्य। और कौन सी है? भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति मतलब भोगो वांछा करे, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, उसको बोलते हैं भुक्ति। और मुक्ति मतलब मुझको तो पांच प्रकार की मुक्ति मिल जाए, चतुर्धा मुक्ति मिल जाए, पांच प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य सारूप्य सान्निध्य सारूप्य सायुज्य इति उत दीयमाना न गृणन्ति विना मत्सेवना जना। सालोक्य साष्टी सारूप्य, सालोक्य साष्टी सारूप्य, सारूप्य सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप्य एकत्वम इति युत युत दिय देयमानं न गृणन्ति एकत्वम इति युत देयमानं न गृणन्ति मत सेवना जना, मत सेवना जना। तो ये पांच प्रकार की जो मुक्तियां हैं वो देने पर मेरे भक्त नहीं चाहते, क्यों? कि वो मेरी सेवा मात्र, मेरी सेवा जन्म जन्म मम जन्मनि जन्मनि स्वरे बहुताद सेवा अहितुकी त्वई बहुताद भक्तिर अहितुकी त्वई। तो मेरे भक्त क्या चाहते हैं? जन्म जन्मांतर क्या चाहते हैं? भगवान की सेवा चाहते हैं। तो भुक्ति मुक्ति वांछा ये उपशाखा है, वो हमको नहीं चाहिए। बाद में कहते हैं सेक जल पाया उपशाखा बाड़ी आए स्तब्ध मूल शाखा बड़ी ते ना पाए। तो उपशाखा है सारा पानी ले लेती है, इसलिए हमारी मूल शाखा जो भक्ति लता मूल शाखा है वो बढ़ती नहीं है। प्रथमे ही उपशाखा करे छेदन तबे मूल शाखा बढ़ी आये वृंदावन। जैसे ही बुद्धिमान भक्त आदि लता के पास अवांछित लता को बढ़ते देखे उसे चाहिए कि वह तुरंत उसे काट डाले, तब भक्ति लता बीज की असली लता ठीक से बढ़ती है और वह भगवत धाम पहुंचकर कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेती है। प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादे लतावलंबी माली कल्प वृक्ष पाए। जब भक्ति का फल पक कर नीचे गिर पड़ता है तो माली उस फल को चखता है। इस तरह वह लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्पवृक्ष तक पहुंच जाता है। तहां से कल्पवृक्षेर करे सेवन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन। वहां पर भक्त भगवान के कल्पवृक्ष तुल्य चरण कमलों की सेवा करता है। वह बड़े ही आनंद पूर्वक प्रेम रूपी फल का आस्वादन लेता है और शाश्वत सुखी बन जाता है। कैसा सुख उनको प्राप्त होता है? कैसा सुख प्राप्त होता है? हाँ, शाश्वत। वेरी गुड। शाश्वत मतलब
जो कभी नष्ट
ना हो। शाश्वत मतलब
जो कभी नष्ट
ना हो। शाश्वत सुख का मतलब क्या है? हाँ, शाश्वत मीन सनातन, सनातन सुख। मतलब कि दुख जैसी बात ही आपको याद नहीं आएगी। क्या?
दुख जैसी बात याद नहीं
आएगी, याद ही नहीं रहेगी और न आएगी। उसको बोलते शाश्वत सुख। तो शाश्वत सुख कब होगा? जब आप भक्ति लता का फल जो है, प्रेम रूपी कृष्ण प्रेम रूपी फल है, वो प्राप्त करोगे। मतलब कि कृष्ण भगवान का की सेवा करोगे आप। तहां से ही कल्प वृक्ष करे सेवन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन। यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, यारो आगे तृण तुल्य चारो पुरुषार्थ। गोलोक वृंदावन में भक्ति रूपी फल का आस्वादन ही जीवन की परम सिद्धि है। इस सिद्धि के आगे चार प्रकार की भौतिक सिद्धियां, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तृण के समान है। तो ये जो परम पुरुषार्थ के कृष्ण प्रेम है, और एक कृष्ण प्रेम के आगे धर्म अर्थ, अर्थ मीन्स पैसा, धर्म मीन्स हमारी फर्जे, पिता की ओर, पत्नी की ओर, माता की ओर, पुत्री की ओर, पुत्र की ओर, फर्जे। तो धर्म अर्थ काम, काम मीन्स विषय सुख, विषय इंद्रिय हैं, पांच इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां हैं। तो एकादश इंद्रियों को, इंद्रियों का विषय का सुख कराना, उसको बोलते हैं विषय सुख काम। तो कितनी इंद्रियां हैं हमारी? कौन सी कौन सी? हाथ पांव, हाथ पांव, जननेन्द्रिय और वैक्यूएटिंग और जीभ, ये 11 जीव हो गए। तो मन 11 हो, या तो वाणी, वाणी या मन को 11वां समझते हैं। तो एकादश इंद्रिया, तो एकादश इंद्रियों को हम जो उनका विषय देते हैं, उनको बोलते हैं विषय तृप्ति या सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मुक्ति, पांच प्रकार की मुक्ति अभी आपको मैंने लिखाई। तो ये चार पुरुषार्थ हैं, लेकिन ये सात चार पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम के आगे कैसा है? तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। ये चारों पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के आगे कैसे हैं? कैसे हैं? तृण की तरह। तृण मतलब तृण मतलब
तृण
हाँ
हाँ
घास का जो तिनका होता है ना, तो उनका कोई वैल्यू नहीं होता। उनकी कोई वैल्यू होती है? घास का तिनका रास्ते में गिरा है तो कोई उसको उठाता है?
नहीं,
उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह ये चारों पुरुषार्थ इसी तरह तुच्छ है भगवान के प्रेम के आगे। बाद में कहते हैं जब तक उस कृष्ण के शुद्ध प्रेम की रंच मात्र भी सुगंध नहीं होती जो हृदय के भीतर कृष्ण को वश में लाने की पूर्ण औषधि है, तब तक भौतिक औषधियां, ब्रह्म विषयक सिद्धियां, सत्य सम तितिक्षा आदि योगियों की समाधि तथा ब्रह्मानंद ये सभी मनुष्य को अद्भुत लगते हैं। कब तो अद्भुत लगते हैं ये सब चीजें? सुनो, आपका ध्यान घर में है। जब तक कृष्ण प्रेम, शुद्ध प्रेम कृष्ण का हमारे हृदय में जागृत नहीं होता, तब तक हमको ब्रह्मानंद में आनंद होता है, या तो योगियों को समाधि में आनंद होता है, या तो सत्य समो दमो तप शौचम शांति आर्जवम इन चीज़ों में हमको आनंद आता है, या भौतिक सिद्धियों में प्राप्ति सिद्धि अनिमा सिद्धि लघिमा सिद्धि ये सब सिद्धियों में हमको आनंद आता है, या ब्रह्म विषय या ब्रह्म में आनंद आता है। लेकिन जब कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है तो ये सब चीज़ें हमारे लिए तुच्छ हो जाती है, क्योंकि उच्च प्रकार का हमको स्वाद मिला तो निम्न प्रकार का स्वाद आपो आप चला जाता है ना। जैसे किसी को लाड़ू अच्छे लगते हो तो लाड़ू मिल गए तो बाद में रोटी या रोटला या परोठा या सूखा जो भी हो लड्डू मिल गए सब दूसरे टेस्ट मामूली हो जाते हैं। उसी तरह कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो गया, बाद में ब्रह्मानंद या तो ज्योति में मिलना या तो सिद्धियाँ या तो मुक्तियाँ या तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब तुच्छ हो जाते, क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, हमको परम स्वाद मिल गया तो निम्न कक्षा का स्वाद आपो आप तुच्छ हो जाता। शुद्ध भक्ति हैते है प्रेमा उत्पन्न अतएव शुद्ध भक्ति करिए लक्षण। शुद्ध भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है, अतएव मैं शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षणों का वर्णन करूँगा। चैतन्य महाप्रभु अभी शुद्ध भक्ति के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो ये आपने लिखा है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा। जब उच्च कोटि की भक्ति उत्पन्न होती है तो मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाए। भक्त को चाहिए कि वह कृष्ण की इच्छा अनुसार उनकी निरंतर सेवा करें। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? ये उत्तम भक्ति है। अन्याभिलाषिता शून्यम, आप देख लेना श्लोक में, श्लोक नहीं आपके घर है ना श्लोक बुक, उसमें ये शुद्ध भक्ति है। अन्य वाचा अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म अनुकूल्य सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलन। सो अन्य वांछा शून्य, अन्य पूजा शून्य, छाड़ी ज्ञान और कर्म, और कर्म और ज्ञान को भी छोड़ छाड़ के अनुकूल्य न, कृष्ण भगवान को अनुकूल सर्व इंद्रिय अपनी इंद्रियों सर्व अपनी सर्व इंद्रियों से अनुकूल श्री कृष्ण भगवान की सेवा करना, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। लिखो बेटा, उनको बोलते हैं शुद्ध भक्ति, है ना। शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? कैसे? नहीं नहीं क्या क्या छोड़ छाड़ के? हाँ, ज्ञान और कर्म को छोड़ के, और अन्य पूजा को छोड़ के, और अन्य वांछा को छोड़ के हमारी इंद्रियों से कृष्ण भगवान की इंद्रियों की अनुकूलता से सेवा करना। अनुकूल हमारी अनुकूलता से नहीं, कृष्ण भगवान को जो अनुकूल हो इसी तरह सेवा करना, उनको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। यही शुद्ध भक्ति है, हैते प्रेम है। पंचरात्र भागवत यही लक्षण का है। पंचरात्र और भागवत में क्या सिखाया है कि यही शुद्ध भक्ति यह आते प्रेम है। ऐसी शुद्ध भक्ति से ही श्री कृष्ण भगवान में हमारा शुद्ध प्रेम पैदा होता है। तो ये कहाँ कहा गया है ससे रीता और पंचरात्र में है ना, सब शास्त्रों में यही कहा गया है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा ब्रह्म की सेवा करता है तो दो तथस्थ प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। सो नारद पंचरात्रि में से श्लोक है। नारद मुनि ने ये भक्ति की व्याख्या की। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम मतलब सब उपाधियों से मुक्त होके, मैं बाला हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, तो ये सब उपाधियाँ हैं। धनिक हूँ, गरीब हूँ, ये सब उपाधियों को छोड़ छाड़ मतलब कि शरीर के संबंध में जो भी उपाधियाँ हैं उनको छोड़ के सर्व उपाधि विनिर्मुक्त मुक्त होके तत्परत्वेन निर्मलम और निर्मल होके मतलब कि सब आत्मा ब्रह्म की सेवा करता है तो दो तथस्थ भाव होते हैं। निर्मल होके क्या करना है, निर्मल होके ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करना उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा क्या है,
अपनी इंद्रियों
से कृष्ण वाली इंद्रियों की सेवा करना। कैसे, वेरी गुड। तत्परत्व यद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये, यद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये, मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगाम्बसो अम्बुजौ अम्बुजौ। जिस तरह गंगा का दैवी जल अबाध गति से समुद्र में जाकर मिल जाता है उसी तरह जब मेरे भक्त मेरा श्रवण करते हैं तो उसके मन मेरे पास आते हैं, मैं उन सबों के हृदय में वास करता हूँ। ये भागवत का श्लोक है, कृष्ण कह रहे हैं कपिल देव के रूप में। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम अहितुक्यत वहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लक्षण है कि यह अहितुकी होती है और किसी तरह रोके नहीं रुकती। सालोक्य श्रास्ती सामीप्य सारूप्य ऐकत्वम अपियुत दीयमानम न गृहणन्ति विनाश तत्सेवनम जना। मेरे भक्त मेरी सेवा करने के आगे सालोक्य श्रास्ती सारस्त्री सामीप्य तथा सारूप्य इन मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। पांच प्रकार की मुक्ति है। सैव भक्ति योगारव्य आत्यंतिक उदाहृत एनातिव्रज्य त्रिगुणम मद्भावा योपपद्यते। ऊपर बतलाया गया भक्ति योग जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान की भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और प्रत्यक्ष भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिक पद प्राप्त करता है। तो ये हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य। अजय सत्व रजस एंड तमस चित्तन, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, ये तीन गुण है। और कोई सवाल आगे बढ़े?
हाँ, जैसे हम किसी को कुछ बोले ना, अगर मन में कुछ ऐसा विचार है अपराध के बारे में उनके कुछ, तो
वो कलयुग में माफ है, लेकिन फिर भी वैसे अपराध मन में भी ना हो।
जैसे हम किसी को शो ना करें लेकिन मन में कुछ आ जाए,
हाँ तो वो भी अपराध है, लेकिन वो इतना बड़ा अपराध नहीं। मन में जो अपराध हो जाए वो कलयुग में माफ है, मन में जो पाप हो जाए वो कलयुग में माफ है, लेकिन फिर भी वो हटा देने से हम बहुत उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे, है ना?
मन की शुद्धि,
जैसे मैंने ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये प्रैक्टिस किया, ये प्रैक्टिस किया, क्या प्रैक्टिस किया कि भाई वैसे कैसे भी थर्ड क्लास भी भक्त हो लेकिन उनका अपराध मन में भी नहीं चाहिए, तभी ये प्रैक्टिस ही परफेक्शन हो गई है कि कोई भी भक्त का अपराध आता ही नहीं, मन में भी नहीं आया। महत्व वैष्णवों का महात्म्य जानना चाहिए, परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, वैष्णवों का परम भाव जानना चाहिए, भगवान का परम भाव मतलब उनके दिव्य भाव जानना चाहिए, तो फिर बाद में अपराध नहीं होगा कि एक करोड़ों में अरबजों में खरबजों में एक व्यक्ति एक है वैष्णव है। कल मैंने समझाया था कि कितने जीवों में से वैष्णव कितने रेयर, कितने उच्च कोटि के, तो ऐसा भाव परम भाव वैष्णवों का जानना चाहिए। आप कुछ बता रही थी, कुछ बता रही थी?
मैं ये कह रही थी कि जाप करते करते मन की शुद्धि अपने आप ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है।
हाँ, तो जाप अगर मूड से अच्छा मूड से आप करोगे बराबर गौर से घड़ी लेके और बराबर ध्यान लेके मन हृदय से, मन न हो तो हृदय से आप जप करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल शुद्धि हो जाएगी।
कुछ ऐसी गुस्सा भी आ जाती है, कोई ऐसी बात करती है तो कहना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, कब तक रुके? एक बार तीन बार चार बार तेरे सामने करते हैं फिर भी कहना पड़ता है।
लेकिन मैंने ये देखा है कि कई लोग जीरो क्रोध पर चलते हैं, जीरो क्रोध पर इतने शांत सुखी होते हैं, सुखी। एक क्रोध है नरक का द्वार है, त्रिविध नरक सेदन द्वारम नाशनम आत्मनम काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् त्रयते त्यजेत। नाशनम आत्मनम मतलब आत्मा का नाश करने वाले तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मा मतलब आप कौन हो?
आत्मा,
तो आपका नाश करने वाले तीन शत्रु हैं, कौन से कौन से? तो आप नाश करवाना चाहते हो उनसे, करवाना चाहोगे?
नहीं
तो इसको छोड़ दो, तस्मात् त्यजेत, इनको तोड़ छोड़ त्यजना पड़ेगा, कोई भी हालत में उनको दम कर दो, दमन करो, क्रोध का दमन करो, और हो सकता है तृणादपि सुनिचे न तरोरे वसासने अमानी न मान दिन कीर्तन सुनि। अगर आप ये चार चीज़ें करोगे क्रोध जीरो हो जाएगा। माफ करना सीखोगे, प्रभुपाद जी कहते हैं क्रोध को कम करना है तो माफ करो, अगर आप माफ कर दोगे तो कैसे क्रोध आएगा, आएगा? तो आगे बढ़े, और किसको क्या और कोई कहना के चाहते थे ना? यद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहासे मनोगच्छतीर विछिन्ना यथा गंगा वसो तो अम्बुदो। जिस तरह गंगा का दैवी जल अबाध गति से समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह जब मेरे भक्त मेरा श्रवण करते हैं तो उनके मन मेरे पास आते हैं, मैं उन सबों के हृदयों में वास करता हूँ। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहृतम अहितुक्य अवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लक्षण है कि यह अहेतुकी होती है और किसी तरह रोकी नहीं जाती। सो भगवान की अहित भगवान की प्रेम भक्ति के लक्षण दो है। कौन से दो लक्षण हैं? कि अहेतुकी होती है, कोई भी प्रकार के हेतु बिना, अपेक्षा बिना, और दूसरा उसका लक्षण है कि रोकी नहीं जाती, मतलब कि अप्रतिहता, मतलब कि सतत तेल धारा के मुताबिक, तेल धारा का प्रवाह सतत होता है, उसके मुताबिक भक्ति सतत होती है। तो शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति के दो यह लक्षण बताए, कौन से? वेरी गुड। अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी मतलब कुछ भौतिक हेतु के बिना, और प्रतिहता अप्रतिहता मतलब तेल धारा के मुताबिक सतत,
जिसे रोका
ना जाए। मैंने तो पढ़ लिया था सर, फिर भी सालोक्य श्रास्त्र सामीप्य सारूप्य एकत्वमपि दीयमानाम न गृणन्ति गृणन्ति विना मत सेवनम जना। मेरे भक्त मेरी सेवा करने के आगे सालोक्य श्रास्त्र सामीप्य तथा सारूप्य इन मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। स एव भक्ति योगारव्य आत्यंतिक उदाहरतः एनातिव्रज्य त्रिगुणम मद्भावायोपपद्यते। ऊपर बतलाया गया भक्ति योग जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान की भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और प्रत्यक्ष भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिक पद प्राप्त करता है। भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है साधन करी ले प्रेम उत्पन्न है। भुक्ति और मुक्ति यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की चाह के उत्प्रोत हैं तो वह शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर तक नहीं उठ सकता, भले ही वह नियमित विधि विधानों के अनुसार दिखावटी भक्ति क्यों न करता हो। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिचासी हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख स्यात्र कथम उपदयो भवेत। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा तथा भवबंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये दो पिचासिणियाँ हैं। कौन सी दो पिचासिणियाँ हैं? भवबंधन से मुक्ति, ये दो पिचासिणियाँ हैं जो भूत प्रेत की तरह मरड़ाती रहती हैं। जब तक ये पिचासिणियाँ हृदय में रहती हैं तब तक पहला दिव्य आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है? जब तक ये दोनों हृदय में रहती है तब तक भक्त को दिव्य आनंद उठा पाने की संभावना नहीं रहती। दिव्य आनंद का आस्वादन आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको दो पिचासिणियाँ लगी हैं, दो भूत प्रेत लगे। कौन से? भौतिक जगत से मुक्त होने की इच्छा और भौतिक भव को भोगने की इच्छा, ये दोनों पिचासिणी है।
जैसे ये जय कृष्ण प्रभु कह रहे थे ना कि मैं छोड़ देता हूँ ये सब, ये तो मुक्ति की इच्छा है। बाधा है,
हाँ ये पिचासिणी है,
ये छोड़ दूंगा, सब छोड़ के फिर सेवा करूंगा,
मैं सब छोड़ दूँ,
मुक्ति
की पिचासिणी मुक्ति। साधन भक्ति है ते हय रति रउदय रति गाढ़ है ले तार प्रेम नाम है कई। नियमित भक्ति करने करते रहने से मनुष्य क्रमशः भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तो यही भगवत प्रेम कहलाने लगती है। नहीं, भक्ति करते रहो।
मतलब जैसे अगर हम सोचे कि हम गृहस्थ आश्रम में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सोचना।
गृहस्थ आश्रम में ही कर सकते, गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं कर सकते?
हाँ, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम गांव में छोड़।
पिशाचिनी है ये, पिशाचिनी। गृहस्थ जीवन छोड़ दे और हम मुक्त हो जाए और बाद में शुरू करें भक्ति, नहीं, ये पिशाचिनी। गृहस्थ जीवन में भी भक्ति कर सकते हैं, करनी चाहिए।
एक बहाना है ना,
घर से छूटने का बहाना है।
प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे बढ़कर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव तथा महाभाव कहलाते हैं। सो प्रेम, कृष्ण प्रेम के स्टेज हैं। पहले कृष्ण प्रेम स्नेह बनता है, बाद में स्नेह में से मान उत्पन्न होता है, राधा रानी को मान उत्पन्न होता है, वैसे मान। बाद में प्रणय, प्रणय से राग में प्रणीत होता है मान। जैसे मान खाना, जैसे कि राधा रानी कृष्ण प्रेम में कृष्ण से मान मान रूठना, प्रेम से रूठना, रूठ जाती है, तो प्रेमी उनको मनाते हैं, तो उनको बोलते हैं मान मान प्रणय, बाद में प्रणय, बाद में राग अनुराग भाव और महाभाव। तो ये महाभाव ये सबसे ऊंचा प्रेम का आस्वादन है। तो ये तीन लोगों ने तीन लोगों ने महाभाव का अनुभव किया, चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी और तीसरा नहीं जानता, नहीं दो जानता हूँ, माधवेंद्रपुरी। ये तीनों ने महाभाव का आस्वादन किया, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का महाभाव में आके आस्वादन किया। माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु माधवेंद्रपुरी। तो ये महाभाव प्रेम का आस्वादन इन्होंने किया, राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु और माधवेंद्रपुरी, इन्होंने महाभाव का आस्वादन किया। आपको ये सब बड़ी ऊंची ऊंची बातें हम बताते हैं, यू डाइजेस्ट एवरीथिंग। ये तो सब
क्या पता आगे इनमें से ही भाव महाभाव प्रकट
हो जाए इनमें से किसी के, है ना, हो सकता
जरूर
होगा। ये छे बीज इक्षु रस गुड़ खंड सार शर्करा सीता मिश्री उत्तम मिश्री यार। प्रेम के क्रमिक विकास की तुलना, अभी तुलना करते हैं, चीनी की विभिन्न अवस्थाओं से की जाती है। पहले गन्ने का बीज होता है, और गन्ने के बीज में से गन्ना फूटता है, और गन्ने में से तब गन्ने का रस पैदा होता है, और जब रस को उबाला जाता है तो सीरा बनता है, जो ठोस बनकर गुड़ बन जाता है, और फिर चीनी, गुड़ के बाद क्या मिलती है, चीनी, और फिर चीनी के बाद मिश्री, और मिश्री के बाद कठोर मिश्री, रॉक कैंडी, रॉक कठोर मिश्री तथा उत्तम मिश्री प्रदान करता है। तो ऐसे प्रेम का स्टेज अलग अलग है। प्रेम का स्टेज मतलब कि पहले स्नेह है, मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव। तो इसी तरह ये चीनी के गन्ने का बीज, बाद में गन्ना, गन्ना का रस, गन्ना के रस में से गुड़, गुड़ से चीनी, चीनी से
मिश्री,
मिश्री से कठोर मिश्री, कठोर मिश्री से उत्तम मिश्री महाभाव। तो ऐसा क्रम है भगवान के प्रेम का, एक क्रम है महाभाव तक, प्रणय से लेके महाभाव तक एक क्रम है। सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने कृष्ण भक्ति रस है अमृत आस्वादने। जब सात्विक तथा व्यभिचारी भावों के लक्षणों को मिला दिया जाता है तो भक्त को नाना प्रकार के अमृत आस्वादों में कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का आस्वादन मिलता है। ऐछे दधी सीता धृत मरीच कर्पूर मिलने रसाला है अमृत मधुर। ये आस्वादन दही मिश्री घी काली मिर्च तथा कपूर के मिश्रण के तुल्य है और मधुर अमृत की बाती आस्वादिष्ट होता है। जब ये सब चीज़ें हम मिलाते हैं सही मात्रा में तो वो मधुर मधुर स्वाद उससे बनता है। उसी तरह भगवान के प्रेम का स्वाद भी मधुर बनता है। भक्त वैद्य रति भेद पंच प्रकार शांति रति दास्य रति सख्य रति यार वात्सल्य रति मधुर रति यही पंच विभेद रति भेद कृष्ण भक्ति रसे पंच भेद। भक्त के अनुसार रति पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की रति होती है? शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति तथा मधुर रति। ये पांचों प्रकार भगवान के प्रति भक्त के अभिन्न अनुरक्तियों से उत्पन्न होते हैं। भक्ति से प्राप्त होने वाले रस भी पांच प्रकार के होते हैं। वात्सल्य माधुरी शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य ये पंच प्रधान। कृष्ण भक्ति के रस आस्वादन में ये पांच रस सबसे बड़े हैं। कौन से? शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुरी। दास्यो दास्यो मूत तथा विरह करुणो रौद्र इत्यपि भयानक स बिभत्स इति गौणश्च सप्तदा। पांच प्रत्यक्ष रसों के अतिरिक्त सात अप्रत्यक्ष रस होते हैं जिन्हें हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र भयानक तथा बिभत्स नाम से जाना जाता है। वीर करुण रौद्र भयानक तथा बिभत्स ये सेकेंडरी रस है। तो ये रस के हम अभिलाषी हैं और सबसे ऊंचा रस है कौन सा? माधुर्य रस। और कौन सा माधुर्य रस? उनके विरह में विप्रलम्ब रसाम्बोधि या तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य रस का विश्लेषण करके कौन सा रस कहा? पराकिया रस। पराकिया रसे व्रजते प्रचार। पराकिया रस मतलब पैरामोर, हमारा पैरामोर हो, हमारा कोई प्रेमी हो और हमारा पति हो। तो जो प्रेमिका है वो दोनों के बीच में प्रेम करती है लेकिन उनका पैरामोर में प्रेम मन ज़्यादा लिपटता रहता है विरह में। तो ये माधुर्य रस रस की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा कौन सा? विप्रलम्ब रसाम्बुजे पराकिया भाव। पराकिया भावे रजति प्रचार। तो ये है रस, सब रस। तो यहाँ रुकते हैं।